7931234।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशक 6472903773 6472903773।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो। थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckcube.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 9056075000 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
जी साहब, नाज़िम वेलकम बैक अगेन। एंड शिराज रहीम साहब का कहना है कि वो साहब हेयर मैक्स के रोए रवा हैं और 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। पहली लोकेशन उनकी टोरंटो में है और अब मिसिसागा में, तो दोनों लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी आ गई हो, सुनने में कमी आ रही हो, तो साहब आप इनके पास तशरीफ लाइए और साजो आवाज का हवाला देने पर आपका हियरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। तो शिराज रहीम हेयर मैक्स के 416-792-8792 इनका फोन नंबर है, 416-792-8792 इनका फोन नंबर है। पुलिस ने वार्न किया है भाई, आजकल टैक्सी फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, बेइंतहा टैक्सी फ्रॉड्स हो रहे हैं। अभी कल ही की बात है कि यहां पर लंदन ऑन्टेरियो से एक खातून यहां पर आई हुई थी टोरंटो में, और उन्होंने सब टैक्सी ली, थोड़ी दूर जाना था, $7 का उनका बिल बनाए, $7 के बिल पे उन्होंने जो है $10 निकाल के टैक्सी ड्राइवर को देने की कोशिश की, मगर टैक्सी ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, कहने लगा साहब मैं कैश तो हमारी कंपनी ले नहीं सकती, आपको डेबिट कार्ड देना पड़ेगा। तो उन्होंने साहब डेबिट कार्ड निकाल के उनको दे दिया एंड उसने $7 चार्ज करके एक कार्ड उनको वापस कर दिया। जब दूसरे दिन वो शॉपिंग करने गई, किसी को यूज किया उन्होंने कार्ड, तो पता लगा उनका कार्ड तो फुल है और उसमें तो यूज ही नहीं कर सकते। जब फर्दर इन्फॉर्मेशन के बाद, सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा उस कार्ड पे, वो कार्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका था ही नहीं, और दूसरी बात ये कि $7,500 का उस पर ऑलरेडी किसी ने यूज कर लिया एक दिन के अंदर ही अंदर, फौरी तौर पर। तो टोरंटो पुलिस का कहना यह है कि भाई अगर आप को ये ऐसा मामला हो आपके साथ कि वो कहे भाई मैं हमने कैश लेना नहीं है, हमें कार्ड, तो आप साफ मना कर दें, वो कहें भाई हमें कार्ड मेरे पास नहीं है, कैश लेना पड़ेगा। जो एक्चुअल जो जेन्युइन टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो लोग हमेशा आपसे कैश प्रिफर करते हैं लेना, मगर अगर कोई मना कर रहा तो देश दाल में काला है वहां पर।
नाजी भाई एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। टेलीग्राम के सीईओ, आपको पता ही है कि आज वो फ्रांस में उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया जिसको 2018 में प्रेसिडेंट मैक्रॉन से मिले थे और उन्होंने इनको सिटीजनशिप के लिए भी ऑफर किया था, और इनको ये भी ऑफर किया था कि आप टेलीग्राम का जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस में मूव कर लें। मैं आपको बाकायदा वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर कर चुकी हूं, मगर अभी अभी पता चला है कि पेव ट्रोव जो है फ्रेंच हु हैज फ्रेंच सिटीजनशिप फेसेस प्रोसिक्यूशन ओवर द फेलियर टू, उन्होंने जो टेलीग्राम ऐप पे क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने में नाकाम रहे जिसपे इनपे चार्जेस लगे हैं। द हेड ऑफ टेलीग्राम
ये इनके पास फ्रांस की सिटीजनशिप है
2018 में इनको दी गई थी ना, 2018 में दी गई थी। बुनियादी तौर पर ही इज रशियन, मगर रशिया ने जब किया तो फिर ये ताजिकिस्तान की तरफ चले गए, वहां से इनको फ्रांस से 2018 में मैक्रॉन से खुद मिले थे, उन्होंने इनको मूव होने का कहा था, अपना हेड ऑफिस मूव करने का कहा था, विच ही डिड नॉट, और इनको सिटीजनशिप तब दी गई थी। अब टेलीग्राम के जो पेवल ट्रोरोव हैं इनको चार्ज किया गया फ्रांस में अलोइंग क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द मैसेजिंग ऐप बट अवॉइडेड जेल, उन्होंने अपनी बेल करवा ली। ये 5 मिलियन जो फ्रांस की यूरोज में करवाई है। रशियन बॉर्न मल्टी बिलियनर, इनको फ्रेंच सिटीजनशिप के साथ है, इनको कंडीशनल रिलीज किया, कंडीशन दैट रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन ट्वाइस अ वीक एंड रिमेन इन फ्रांस, छोड़ नहीं सकते, फ्रांस से जा नहीं सकते, या तो फिर अब अपना दफ्तर मूव कर लेंगे, यू नो ये दुनिया में
नहीं, इनका हेड ऑफिस अब दुबई में है,
दुबई में है ना, मगर फ्रांस वांटेड के ये हेड ऑफिस को
हमारी बात मानो या
मानो। अच्छा अब मजे की बात ये है कि फ्रांस छोड़ भी नहीं सकते, ही कैन नॉट लीव फ्रांस, और हफ्ते में 2 दफा उनको पुलिस स्टेशन को जाके दिखाना भी है आई एम हियर। अब इसीलिए कहते हैं कि बंदा नोन हो तो भी प्रॉब्लम है, बंदा अननोन हो तो भी प्रॉब्लम है कि नहीं। वो कहते हैं इनके इसमें कॉम्प्लिसिटी इन स्प्रेडिंग ऑफ सेक्सुअल इमेजेस ऑफ द चिल्ड्रन, एंड अब इन एप्स पे बाज लोग इस तरह के इमेजेस कर देते हैं जिसमें इन एप्स में भी आपको अनकरीब फायरवॉल्स नजर आएंगी, ताकि ज्यादा ऑब्जर्व किया जा सके कि कोई दूसरा भी ना कर सके, मतलब सीईओ नहीं कर रहे थे
ट्रैप। मगर कभी किसी को ट्रैप करना हो तो उसके अंदर पर आपको ये मुझे क्या पता कि किसने वो फिल्में डाली थी उधर।
नहीं नहीं देखिए होता ये है कि किसी भी ऐप पे आप मतलब सीईओ बैठ के तो ये काम नहीं कर रहा ना। आपने कल बल्कि ये कहा था कि इन पे बड़ा कौन मुझे कल कह रहा था कि बड़ा सीरियस चार्ज है चाइल्ड वो उसका पोर्नोग्राफी का इन पे चार्ज है। तो आई वाज सरप्राइज कि व्हाई वुड इट बी, मगर उनकी ऐप को इस्तेमाल करते हुए जैसे
950 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इनके पास।
एग्जैक्टली तो अब वो कहते हैं इन पे जो चार्ज था इनको फ्रांस के बाहर एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था और फेलिंग टू एक्ट अगेंस्ट द इलिसिट कंटेंट ऑन द हिज सर्विस। अब जो ये कंटेंट है ये तो ज़ाहिर है वो जो यूजर है वो डाल देते हैं। आप देखिएगा व्हाट्सएप पे आपको क्या क्या नजर नहीं आता, इसका मतलब है कल को एक्स को भी आप एलॉन मस्क कर ले। एलॉन मस्क ने यही तो कहा था जो एक्स के हैं बानी एक्स के जो ओनर हैं उन्होंने ये कहा था कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए इस पे चार्जेस क्या हैं। तो चलो जी एलॉन मस्क को भी ठंड पड़ गई होगी कि नाउ द चार्जेस आर देयर कि भाई इनकी ऐप के ऊपर जो कंटेंट है ना वो इलिसिट कंटेंट है यानी गलत कंटेंट है। और उनकी जो सरप्राइज असेस्ड है स्पॉटलाइट ऑन क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ टेलीग्राम बड़ी पॉपुलर ऐप है 1 बिलियन इसके यूजर्स हैं और जाहिर है फ्री स्पीच जो है कि क्या दुनिया के इन एडवांस कंट्रीज में स्पीच फ्री स्पीच अलाउड है कि नहीं। फ्रांस जो साइबर क्राइम के जो स्पेशलिस्ट हैं और फ्रॉड डिटेक्टिव उन्होंने अनाउंस किया है इस हफ्ते में कि अरेस्ट के जो 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 सीओएन का अरेस्ट वाज अ पार्ट ऑफ वाइड रेंजिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेलियर ऑफ मॉडरेट एलिजिड क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द मैसेजिंग ऐप। अच्छा अब इसमें अगर आप फेसबुक पे देखें आपको याद होगा फेसबुक पे मार्क जकरबर्ग ने ये सिस्टम शुरू किया था। एक्स पे ट्विटर हुआ करता था उन जमाने में ट्विटर हुआ करता था। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को भी बैन कर दिया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी ऐसी न्यूज डाल देते थे जिसमें फैक्ट चेक आ जाया करता होता था, याद है ना आपको माजिद भाई। तो अब वो ये कहते हैं कि अगर इनके ऊपर ये है तो अब इसका मकसद है कि ये एप्स भी अपनी फायर वॉल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग कर देंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देंगी। बहरहाल नथिंग टू हाइड एंड ट्रेवल फ्रीक्वेंटली यूरोप में ट्रेवल करते हैं और उन्होंने कहा है कि इट इज एब्सर्ड टू क्लेम दैट द प्लेटफॉर्म इट्स ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या सीईओ जो है उसने एक कम्युनिकेशन के लिए पैथवे दिया हुआ है और अगर उसमें लोग पोस्ट करते हैं तो व्हाट कैन यू डू। फेसबुक के ऊपर भी बड़ा कुछ आता है तो यू कैन नॉट होल्ड मार्क जकरबर्ग रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने सेल्फ स्टाइल लिब्रेशन है और रशियन मार्क जकरबर्ग जो है लिव्स इन दुबई, ये दुबई में रहते हैं। टेलीग्राम बीन का ऑफिस भी वही है, इनकी सिटीजनशिप फ्रेंच है, होल्ड सिटीजनशिप ऑफ फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमारात की सिटीजनशिप के पास है। ही रिसेंटली सेड ही हैड ट्राइड टू सेटल इन बर्लिन लंदन सिंगापुर सैन फ्रांसिस्को बिफोर चूजिंग दुबई। यानी देखिए इन्होंने बर्लिन में को भी जाके देखा कि मुझे यहां रहना चाहिए, लंदन को भी देखा, सिंगापुर को भी देखा, सैन फ्रांसिस्को भी देखा, बट अल्टीमेटली इन्होंने फिर दुबई को चूज कर दिया। वो कहते हैं दुबई बेहतरीन जगह है, बिजनेस एनवायरमेंट है और बड़ी न्यूट्रलिटी है, यानी एक दरमियाना माहौल है, कोई इंतहाई चीज नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट इनकी जो ऐप है, अब मुझे नहीं पता व्हाट्सएप को कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मगर वो कहते हैं टेलीग्राम जो है क्लोजली मॉनिटर्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द एलिजिट यूज ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ वेरी सेफ, इवन जो जेलेंस्की हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है ही इज मोर। आपको याद होगा टेलीफोन के हवाले से भी एप्पल के बारे में एक जमाना था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हमारा ब्लैकबेरी इस्तेमाल किया करता था, डू यू रिमेम्बर वाजिद भाई, बिकॉज ओबामा ब्लैकबेरी यूज करते थे क्योंकि दैट वॉज मोर सिक्योर्ड। तो बहरहाल इंटरव्यू विद द फाइनेंशियल टाइम इन मार्च उन्होंने कहा था वैल्यूड एट मोर देन 9 बिलियन चाइल्ड अब्यूज मटीरियल एंड द पब्लिक कॉल्स फॉर द वायलेंस वर रेड लाइन्स फॉर टेलीग्राम। अलाउ नहीं करता मगर जाहिर है ये तो अगर यूजर्स ने किया था, रशिया में पैदा हुए थे, रशिया में रहते थे, 2014 में इन्होंने रशिया को छोड़ दिया था, रिफ्यूजिंग टू कम्प्लाई विद द क्रेमलिन डिमांड टू शट डाउन ऑपोजिशन ग्रुप्स, जो जेलेंस्की और जो यूक्रेन के ग्रुप्स हैं उनको छोड़ने के, ई रिफ्यूज के नो, मतलब मेरा एक मीडिया ऐसा है विच इज फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड एवरीबडी विल बी एबल टू यूज इट, सो दिस इज ऑल वॉट इट इज. यहीं पे मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहती हूं. जब आप एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है और यूनाइटेड अरब अमारात में डेमोक्रेसी नहीं है, सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है. तो अभी एक और डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो फिर फ्रांस में भी डेमोक्रेसी नहीं है. किस जमहूरियत की बात करते हैं फ्रांस में? फ्रांस ने भी तो यही कहा था ना कि आप अपने दफ्तर को यहां मूव कर दें और आप हमें मतलब एक्सेस दें आप अपनी ऐप के ऊपर. बहरहाल ये अपने आप को रशियन एग्जाइल कहते हैं.
कभी किसी से आप जब बात कर रही हो, मैं भी कोई किससे के बात कर रहा हूं तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करें, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी.
माजी भाई देर इज नो डेमोक्रेसी यहाँ पे. कैनेडा में रहते हुए लोग कहते हैं देर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप जो बात करते हैं,
घरों में डेमोक्रेसी नहीं होती तो आप क्या बात कर रही हैं? घरों के अंदर आपका बेटा अगर कुछ वो आपके
मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं.
अगर मैं आपका मतलब आपका नहीं है
कि आप मुझे भी कह लें तो मुझे क्या फर्क.
तो वो अगर
मेरे घर में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं
देख लीजिए,
जीता रहे, अल्लाह खुश रखे उसको. नो अल्लाह खुश रखे उसको. हाँ अगर मैं उनको आज वो रियलाइज नहीं करते, अगर मैं ये कहती हूँ कि रात को 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते या 11 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, दिस इज नॉट कि देर इज नो डेमोक्रेसी. मैं उसको ये समझाती हूँ कि बेटा अक्सर क्लब्स के बाहर तुम्हें गोलियां चलती महसूस हुई होंगी, तुमने कई बार ये खबर पढ़ी है. हो सकता है कि तुम नाइव हो सकता है कि तुम किसी चीज में भी इन्वॉल्व ना हो, मगर किसी और की गोली आके तुम्हें लगेगी तो मतलब इंसल्ट तो बाप की है ना तुम्हारे की. तो अब अगर आप ये कहते हैं कि इट्स अ डिक्टेटर वे, यू कैन से वॉट एवर, से हू केयर्स. हा हा, एक गाना सुनते हैं. एक इंटरव्यू के लिए तैयार रही है हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ होंगे. ब्रिगेडियर हसन खान के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन प्रोग्राम्स पे आप इनको सुनते हैं, ब्रिगेडियर हसन खान को आप सुनते हैं. हमने उनसे जिक्र किया है ऑफकोर्स इस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बलूचिस्तान के हवाले से. मैं एक इंटरव्यू मेरा एक पाइपलाइन में है जिसकी मैं कोशिश कर रही हूं कि मुझे वो इंटरव्यू मिल जाए इंशाल्लाह, एंड आई विल ट्राई कि बलूच 1971 में मैं और आप पाकिस्तानी हम जो मर्जी कह लें कि जी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, एनीबडी कैन से, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से आई एम नॉट जर्नलिस्ट. नो, यस, वक्त और हालात थे. तीजा लड़िया तो चुगा रड़िया, बांग्लादेश बना, सेलिब्रेशन हुई. मुझे याद है बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच था, बांग्लादेश जीता. ये बात 2000 से पहले की बात है मेरा ख्याल है. और आप यकीन कीजिए बांग्लादेश ने छुट्टी अनाउंस कर दी थी उस दिन के लिए, नेशनल हॉलीडे अनाउंस कर दी. आज जो बांग्लादेश में वाकयात हुए हैं, बांग्लादेश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान का तराना गाता हुआ भी सुनाई दिए. और मैं ये सोचती हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे लीडर साहिबान जो हैं वो अपने जाती मफादात के लिए दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस बट दे डोंट नो व्हाट पीपल विल गो थ्रू. ठीक उसी हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं. अभी अभी मुझे एक और खबर करी है, तो जी पाकिस्तान में शार्क टैंक्स आ गए हैं. व्हाट मेड यू लाफ?
व्हाई? बिकॉज जितना ये लोग के पास पैसा नहीं है उतना पाकिस्तानियों के पास पैसा है.
अभी हमें दिखा रहे ट्रिब्यून की खबर है जी, इज पाकिस्तान गेटिंग इट्स ओन शार्क टैंक, हियर इज व्हाट इट इज. साहब पाकिस्तान के जो आपको पता है कैनेडा में शार्क टैंक्स हैं, जो लोगों के पास आइडियाज होते हैं और उन्होंने अपनी कोई चीज बना ली होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं उनके सामने.
ग्रेट ब्रेन
पाकिस्तान में, ग्रेट ब्रेन्स हैं पाकिस्तान के, पर उन्होंने क्या करना, उसको ब्रांड खरीद के बदला ही मार देना.
oh my god, look at the news if you're watching TV. वो कहते हैं bringing a globally popular show in Pakistan has been a mixed bag with the past ventures like MasterChef Pakistan and Pakistan Idol creating quite buzz only. यानी ये जी ये Shark Tanks पाकिस्तान में भी आने लगे हैं, कॉलर भी आ गए हैं. ये जो पाकिस्तान की शार्क टैंक है आप देख रहे हैं, सारे अमीर अमीर लोग आएंगे, दे हैव मनी, दे हैव फंड्स, ये फिर बंदे को से प्रोडक्ट ले लिया करेंगे, उसको फिर किया करेंगे और उसके बाद बंदा ही मर जाया करेगा. अस्सलाम वालेकुम जी.
जी वालेकुम सलाम
जी. कौन बोल रहे?
मुझे एक कंप्लेन ये करनी थी कि जमाल भाई जो थे पहले इतनी अच्छी माशाल्लाह टोरंटो की खबरों को कवर कर रहे थे, जो आपके पास टाइम है आजकल, अभी थोड़ी दिनों में आप लोग भाग जाएंगे एक घंटे के अंदर, तो पहले माजिद जमाल साहब इतनी अच्छी खबरें, क्योंकि शादियां बहुत लेट आती हैं उस वक्त हम घर पहुंच जाते हैं. जमाल भाई इतनी अच्छी खबरें पहले.
माजिद भाई वैसे मुझे अफसोस है कि आप न्यूज कवर करते थे, अब आप क्यों नहीं
करते? क्या है सारा दिन वैसे ही ऑफिस में
डांस
तो खैर इनका शौक है.
और
शौक ही प्रोफेशन है सर.
प्रोफेशन ब्रेक डाउन
इनको हमारे
ब्रेक डाउन.
वैसे मैं बाय द वे अल्लाह की कसम जुनेद मैं ब्रेक नहीं नहीं मैं ब्रेक डांस सीखने लगी हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे की शादी हुई ना
कोई काम छोड़ दे
मैंने ब्रेक डांस. मैं कल सोच रही थी जब मेरे बेटे की शादी हुई मुझे वैसे डांस वांस नहीं करना आता बिल्कुल, ना गाना गाना आता है ना डांस करना आता है.
नफिल शुक्राने की पड़ेगा
नहीं
आज मैं आजाद हुआ. मेरे साथ बहुत उसके साथ बहुत मुझे रहम आता है बेचारे से, वो बेचारा जहाज पे है.
माय गॉड. नहीं नहीं मैं कल रात को ही सोच रही थी.
सीरियसली माजी एक सीरियसली आप मजाक कीजिएगा बाद में, लेकिन माजी भाई आप अच्छी रिपोर्ट करते थे पहले, टोरंटो को कवर करते थे.
माजी भाई वैसे आपको मैं बताऊँ आपकी आपकी ज्यादती है.
आज ही मैंने तीन रिपोर्टें आपको बताई है यार.
बड़ी मेहरबानी सर. आपकी
चार
कौन सी तीन रिपोर्टें बताई है?
एक दो तीन.
एक चोरी हुई है, एक चोरी हो गई, एक टैक्सी वाला पैसे लेके भाग गया. और
पुलिस सर्विसेज इसके बाद
यार सबसे दुख तो मुझे उस पुलिस सुपरिटेंडेंट का हुआ है जिसको डिमोट कर दिया गया है, मगर वो डिमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर गई, क्योंकि उस औरत ने जिस चीज को हाईलाइट किया कि आज शी इज द फर्स्ट ब्लैक सुपरिटेंडेंट इन टोरंटो पुलिस, बट टुडे रिजल्ट आया उस चीज शी इज डिमोटेड. दो साल में वो दोबारा अप्लाई कर सकती है, मगर शी विल नेवर बी सुपरिटेंडेंट अगेन. रीजन बीइंग कि उसने जिस चीज को वो कहते हैं ना हीरो वही होता है जो मार्क कर दे, शी मार्क द हिस्ट्री कि टोरंटो में रेसिज्म है. क्या वजह है कि ब्लैक कम्युनिटी से लोगों को इंटरव्यूज में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एंड दे आर नॉट गिवन अ पोजीशन?
बस ये रेसिज्म तो हर जमाने में रहा है, आपने नहीं किया बंगालियों के साथ करा पाकिस्तानी बंगालियों को मजाक उड़ाते, हर टाइम पे चलता रहा
है. 100% राइट. और सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, पूरी दुनिया में हर जगह हर शख्स रेसिस्ट है.
आप दूर क्यों जाते हो? पाकिस्तान को छोड़ो, कनाडा की मैं ऑटवा की आपको बात बताती हूँ. ये लड़की जो फर्स्ट नेशन से एक लड़की थी, ये हमारी असेंबली में मौजूद थी. शी रिजाइंड. वो उसके वो जो भी लिबास पहनती थी या उसका जो जो ज्वेलरी थी या उसके जिस्म पे जो निशान था, मेरा ख्याल है वो कोई ब्लैक स्पॉट हमारे पठानों और मकरान वालों की तरह से लगाते हैं. तो वो कहती है कि जब वो जब जाती थी तो उसको अजीबोगरीब नजरों से देखा जाता था और अजीबोगरीब सवाल किए जाते थे. आपको याद है ये तीन साल पुरानी बात है.
एनडीपी की.
एनडीपी की. शी रिजाइंड इन कैनेडा. और कहां उसको उसको तलाशी देना पड़ती थी असेंबली में जाने के लिए, हालांकि शी वॉज मेंबर ऑफ असेंबली.
चलो ठीक है भाई, आप देखिएगा.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
थैंक यू बेटा,
बहुत शुक्रिया.
थैंक यू. आई लव यू जुनेद, बहुत प्यारा मेरा बेटा है. इसको इतराज है कि अगर आप मुझे बेटा कहती हैं तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आती? और मैंने कहा था अच्छा बेटा मैं आऊंगी, मगर आपने मुझे एक ब्रेड खिलानी है. इसकी बेगम एक ब्रेड बनाती है, मैं समझी कोई बड़ी फाइन बेकरी से, इटालियन बेकरी से आई है.
हाँ।
बड़ी स्पेशल थी भाई. नहीं खिलाई इसने मुझे. इसका हाँ, मकसद यही था
या दिखाओगा कि आप घर आए?
घर ही गई थी उसके.
अच्छा घर पे भी नहीं खिलाई?
नहीं खिलाई.
मुश्किल हो गया
है ना. मुश्किल हो गया.
मुश्किल हो गया.
मुश्किल हो गया. चलिए साहब एक एक पोएम सुनाती हूँ आपको, चट चट पर भूल लेना, पोएम भी सुन लेना, उसके बाद एक इंटरव्यू की तरफ लेके चलूंगी। ये इंटरव्यू मैंने शार्क टैंक्स का आपको सुनाया, आपने आपने जुनेद ने मेरी बात को ही टाल दिया। पाकिस्तान में भी शार्क टैंक्स आ रहे हैं और मगर उन्होंने यही करना है कि आइडिया चोरी कर लिया करना है। वकार हसन, ब्रिगेडियर वकार हसन खान हमारे साथ होंगे जो पाकिस्तान आर्मी को सर्व करने के बाद रिटायर हैं, उनसे मुलाकात कराएंगे।
क्विक टॉक, एक एक हमारे साथ कॉलर हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम आजिद भाई।
वालेकुम सलाम।
और बाजी आफा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजय से अर्ज कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने इसलिए कॉल की है कि पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने कभी बंगाली के साथ रेसिज्म नहीं किया, और वो जो रेसिज्म जो अलहदा टुकड़े हुए हमारे, तो जितना दुख पाकिस्तानियों को, वेस्ट पाकिस्तानियों को है, इतना दुख तो ईस्ट पाकिस्तानियों को भी नहीं है।
बहुत
और हम आज भी चाहते हैं खुदा की कसम, मेरा बाप शहीद हुआ 71 में ढाका में, मैं आज भी चाहता हूँ कि दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाने चाहिए। अगर इकट्ठे नहीं भी होते तो नाम में क्या बिगाड़ है, नाम में क्या होती है, कम अज कम आप नाम तो वापस रख दे पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान, ये कोई बुरा नाम तो नहीं है, बेहतरीन नाम है पाकिस्तान, पाक लोगों की जगह। तो मैं ना ही मेरी आवाम पाकिस्तान की।
आपने बड़ा प्यारा, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने जवाब दे दिया। और मैं जुनेद को बताती हूँ कि जुनेद, मैंने बड़ी दफा ये बात एयर पे भी कही है, माई मदर कुड नॉट गेट आउट ऑफ द बेड फॉर 3 days 71 क्यू। हम स्टूडेंट थे और हम बल्कि हैरान थे आप क्यों इतने परेशान हैं। ये मैं आपको तब बताऊँ, सोशल मीडिया ने ज्यादा जरिए किया हुआ है। आपको मैं
जरूर हुआ है, लेकिन वो ऊपर की सतह पे किया है, हमारे जनरलों ने किया, हमारे सियासतदानों
ने। नहीं, आप जनरलों की भी बात को छोड़िए, देखिए जी बांग्लादेश, ये बल्कि ये मामला आज से एक साल पहले ये उठी थी बात, नरेंद्र मोदी साहब ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही हैज टू प्रोटेक्ट इंडिया, तो ही वेंट टू बांग्लादेश और उन्होंने इस बात को ओपनली एक्सेप्ट किया था, क्रेडिट लेना चाहा था कि बांग्लादेश इज पैदावार ऑफ मुक्ति बहामी। और मुझे याद है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज आई थी कि पाकिस्तान को ये चीज लेके जानी चाहिए ऑन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल, थैंक यू,
बहुत मेहरबानी,
बहुत प्यारी कॉल थी आपकी, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपको तब बताऊं कि हर चीज में बाज चीजों को इन्वॉल्व कर देना भी कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। यस, मैं रिग्रेट करती हूँ, मेरा एक रिग्रेट है, मुझे अपने साथ अपने घर में काम करने वाले सारे याद आते हैं, मुझे एक बात का बहुत दुख है, मैं अल्लाह से रो रो के माफी मांगती हूँ, मैं खुदा की कसम रो के माफी मांगती हूँ, अल्लाह ताला वो मेरी अनजाने की मिस्टेक थी कि अगर मैंने किसी की प्लेट को अपनी प्लेट से अलग रखा था तो मुझे माफ कर देना। मगर यस, जब मेरी और मुजफ्फर मेरी जिंदगी में आए तो हाफिज तारिक, अल्लाह करे प्रोग्राम सुन रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वी यूज टू सिट, मेरे घर में जितने लोग हमारे साथ काम किया करते थे हमारी टेबल पे बैठ के हमारे साथ खाना खाया करते। एक इंटरव्यू है ब्रिगेडियर वकार हसन खान, चंद स्पॉन्सर्स, लेट मी गो टू द बैक स्टूडियो, प्लीज स्टे। इस इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा। इस वक्त पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बलूचिस्तान है इसमें बहुत से लोगों का स्टेक है, जाहिर है यहाँ पर ड्रग्स भी हैं, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की वो क्या स्मगलिंग भी का मामला भी है, यहाँ के इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना किया गया, कच्चे का इलाका इज अनदर कंसर्न, अनदर रिजर्वेशन, एंड ऑफ कोर्स जब मैं ये सारी की सारी बातें करती हूँ तो मेरे दिमाग में वही जो उल्टा फतूर दिमाग में मेरे डाल दिया गया उस तरह के सवाल, आपकी ख्याल आपके सवाल मगर होंगे ब्रिगेडियर वकार हसन से। स्टे ट्यून्ड प्लीज।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659, लाइसेंस नंबर
10530। कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेज की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेचारे गदा गाड़ी खरीदते, हर मोड़ पे रुक जाती है।
और बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविस ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
जी सब नाजिम, वेलकम बैक अगेन। 5:30 और 28 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे, जैसे आरफा जी ने कहा कि आरफा जी की बातचीत विद रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनाब वकार हसन खान के साथ क्या बात होनी है। चलिए आप डोंट मिस इट, चलिए आप आपकी मुलाकात करवाते हैं वहां पर। आरफा जी और जनाब ब्रिगेडियर साहब बैठे, बातचीत क्या हो रही है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। सच की तलाश में आज एक और मेहमान मेरे साथ हैं और बासर शख्सियत हैं। हम अपने कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात, और मैं ऑलवेज कहती हूँ, आई एम प्राउड टू से आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, नो आई एम नॉट। मैं आरफा मुजफ्फर, कनेडियन पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कनेडियन, आई लव पाकिस्तान, और मेरा दिल सिर्फ उन लोगों के लिए धड़कता है जिनकी टेबल पे रोटी नहीं है। बेहतरीन बच्चे हैं, इंतहाई काबिल बच्चे हैं, फीसें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उनके एडमिशन्स नहीं हो सकते, दे डोंट हैव मनी। आम लोग जो तस्वीरें देखते हैं बड़े बड़े होटल्स में लंबी लंबी लाइन अप की, ये वो लोग हैं जिनके रोल मॉडल सिर्फ अमीर लोग हैं एंड दे आर आफ्टर मनी। उनमें से किसी एक को भी कानून याद नहीं है जिसका जिक्र कुरान पाक में है कि ऊंटों पे उसकी कुंजियां जाती थी। ये पैसा तो यहीं रह जाना, और मेरे कुरान जो मेरी जिंदगी का लाया अमल है उसमें जगह जगह अल्लाह ने कहा जकात भी दो, खैरात भी करो, जितना दे सकते दो। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज हु आर इन नीड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। But unfortunately, we the Muslims, and especially the Muslims of Pakistan, हम हर शरिया कानून की तो बात करते हैं मगर हम गरीब का जिक्र नहीं करते। यहां तक भी कुरान और हदीस का अगर जिक्र किया जाए तो 40 घरों तक मेरा हमसाया है। हमसाये से मुराद ये है कि अगर मैंने पेट भर के खाया तो क्या मेरे हमसाये ने पेट भर के खाना खाया। कौन हम में से उस मैनुअल की बात कर रहा है, कौन पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे। कुछ खबरें सच हैं, कुछ खबरें गलत हैं, वी लॉग्स हैं, तो यकीनन हम सब वही पैसे के चक्कर में चलते चले जा रहे हैं। एक चीज मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहती हूं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का रोना नहीं है, इन्फ्लेशन ने दुनिया को बड़े बुरे तरीके से हिट किया है। आप देखिएगा कि दुनिया का तीसरा तरक्की याफ्ता मुल्क इस वक्त, या तरक्की की राह पर गामजन मुल्क, दैट इज इंडिया,
ہندوستان میں انفلیشن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ روپیہ کی قیمت اتنی گری ہے کہ $1.87 کے برابر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. ریسیشن میں یو ایس اے کا ریسیشن از افیکٹنگ دا ہول ورلڈ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے پتا ہے کہ آپ بعض اوقات وی لاگز ہی صرف سننا چاہتے ہیں. دس پروگرام از اے ڈسکشن, مگر فیکٹس کو مت بھولیے گا. دیٹس آل واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کی پاکستان کی مارکیٹس میں سے تو مخیر لوگوں نے پیسہ نکال لیا, جو فورن انویسٹرز تھے انہوں نے بھی پیسہ نکالا, مگر انڈیا کی مارکیٹ کے بارے میں سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رائزنگ ٹینشن جو یو ایس اے کے ساتھ ہیں, $1.2 billion باہر نکلا اور ٹوٹل جو نکلا ہے 2.5 billion انڈین مارکیٹ سے نکلا ہے جو ودرا کیا ہے فورن انویسٹرز نے. سو دیز آر دا انٹرنیشنل پرابلمز, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو اقتدار پہ لوگ ہیں, مقتدر حلقے جو ہیں, دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیر آر سم پرابلمز جو ریزالو کی جا سکتی ہیں. آئی ہیو اے ونڈرفل گیسٹ ٹوڈے جن کو آپ پاکستان کے اکثر ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں, جناب گیریئر وقار حسن صاحب, وقار حسن خان صاحب میرے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, آپ کا تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ.
سر میرے تو کنسرنز ہیں, میرا پہلا کنسرن آپ سے جو ہے, آج کل بہت خبر ہے بلوچستان کی اور آج پاکستان آرمی نے یہ کہا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اندر آپریشن. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا, اینڈ آف کورس بلوچستان کا اگر ذکر کرتے ہیں تو اکبر بکی واز فیس آف بلوچستان. ان کی 18th برسی کے اوپر یہ جو کچھ بلوچستان میں یہ واقعات ہوئے ہیں یہ آپ کی اور میرے نوٹس میں دل دہل کے رہ جاتا ہے. یعنی صوبوں کے درمیان رفٹ کریٹ کرنے کا ایک اور طریقہ کار ہے. بلوچستان میں تو آرمی نے کہہ دیا کہ وہ اپنا ایکشن کریں گے. کچے کا ذکر بہت زیادہ ہے جہاں پر پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. یہ تین صوبوں کا سہارا لے رہے ہیں کچے کے ڈاکو. نارملی کچے کا واقعہ جنوری فبروری مارچ فصل کی کٹائی تک ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے امیر اور مقتدر لوگ ان لوگوں کی جا کے فصلیں کاٹ لیتے ہیں یا ان ڈاکوؤں کو ساتھ ملاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. مگر آپ تو یہ اگست جولائی اگست سپٹمبر میں بھی ہم نے کچے کا بہت ذکر سنا. کیا وجہ ہے کہ آرمی انٹروین کر کے اس پرابلم کو ریزالو نہیں کر رہی, لوگوں کی زندگیوں کو آسان نہیں کر رہی؟
جس میں آئی تھنک سام کے آنے سے پہلے یہ پرٹنٹ کوشچن ہے ریگارڈنگ جو کچے کا ہے. وہ آپ نے کہا یہ ٹرائی جنکشن ہے اور اس میں ایک اسپیس کریٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, چاہے وہ وڈیرے ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں, پالیٹیشین ہیں اسی جنکشن میں, اور اس میں پھر صوبائی حکومتوں کا بھی آئی تھنک بڑا میجر رول ہوتا ہے, بیکاز 18th کے بعد پولیسنگ جو ہے, اور یہ ہے بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کا ایشو, اگر اس کو شروع سے پکڑ لیا جاتا تو اس طرح ایکسپینڈ نہ کرتا. لیکن چونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس کے اندر بے شمار پیسہ ہے. ابھی کل بھی آئی تھنک ذکر ہو رہا تھا کہ بلینز آف روپیز کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے الیگل جو ہے. پھر اس کے اندر جو ہے جو الیگل اسپیکٹرم, اس کا مافیا بھی کام کرتا ہے تینوں صوبوں میں, شاید اسمگلنگ ہے, ویپنس کی بھی ہے, نارکوٹکس کی ہے. تو اس میں ایک تو یہ, دوسرا رینجرز جو ہے سیکنڈ لائن میں آتی ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے, لیکن جس آپ نے بتایا حالات جو نظر آ رہے اس میں اگر ضرورت پڑے گی تو فوج کرے گی, کیونکہ اس میں مینلی صوبوں نے ہی ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے. جب وہ ہینڈز اپ کر جاتے ہیں جی کہ ابھی ہمارے بس سے باہر ہے تو آرمی وڈ کم ان, اگر لیٹس سے نیشنل لیول کا مسئلہ بنتا ہے. لیکن حالات کتنے اچھے نہیں ہیں تو لیٹس سی کہ یہ کس طریقے سے, اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ, کہ کیونکہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہے یا رینجرز ہیں, ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے, ٹریننگ ہے, اکوپمنٹ ہے, اور آج کل تو بڑی سرویلنس کے اچھے آپ کے ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ڈرونز آ گئے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر نیت ہو. تو میرے خیال میں اس کو ایز اے نیشنل کاز لے کے اس کا جلدی حل نکالنا چاہیے, اینڈ اٹ از ویری مچ پاسبل, نیت ٹھیک ہونی چاہیے.
بہت شکریہ سر, آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا. اگر میں عام آدمی کے لیے, اور ہماری عوام اب ظاہر ہے اپنے طرح سے انالائز بھی کرتی ہے, انفارچونیٹلی مس گائیڈیڈ بھی ہیں کئی جگہوں پہ ہم, بیکاز دس از میٹر آف 3 provinces. ایک پروونس کی باؤنڈری جب ختم ہوتی ہے تو دوسرے پروونس کی, یا تو تینوں پروونس مل کے ایکشن کریں نمبر 1, اینڈ نمبر 2 क्योंकि वो पंजाब से निकलते हैं तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से निकलते हैं तो सिंध, दे आर टेकिंग रिफ्यूज बिटवीन दीज थ्री एरियाज। तो हर सूबे की अपनी एक लिमिटेशन है। वहां पर आर्मी हर चीज में, चाहे बैरून मुल्क से इन्वेस्टर्स दे के आने हैं, आर्मी इज इन्वॉल्व। अगर पाकिस्तान में ज़रात है तो आर्मी ज़रात के मामले में भी इन्वॉल्व है। व्हाई दे डोंट टेक चार्ज ऑन टू दिस थिंग टू रिजॉल्व दिस वंस फॉर एवर?
आई थिंक इसमें जनरल पॉइंट, अच्छा मैं थोड़ा बताऊं हिस्ट्री में। जब मैं कप्तान था तो वी वर डिप्लॉयड इन सिंध में, पनवाकिल में था, और ये एंटी डकॉय ऑपरेशन बकायदा हुआ था जो वहां पे फॉर्मेशन थी क्वेटा से आई थी, जब वही काकड़ हमारे जीओसी थे, तो वो किया गया था। और इसका मतलब है कि ये एक तो इस जगह की हिस्ट्री भी है, ऑन द दैट वाज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू जो अपर सिंध है वहां पे। लेकिन जो एंटी डकैत ऑपरेशन पूरा 3 साल चला और उसके बाद इसका कलाकमा किया गया, फिर इसने आई थिंक डिफरेंट अदवार में सर उठाया। अभी चूंकि वो बात दोबारा रिपीट हो रही कि पुलिसिंग मेनली सूबों का ही है, सूबों ने ही विल शो करनी है कि जी हमें मदद दी, तो इनहेड ऑफ सिविल पावर फौज आएगी जितनी भी जरूरत है। मेरे ख्याल में लेट्स सी कि अगर रेंजर्स और पुलिस जो है इसको मैनेज, पुलिस के अंदर भी आपने देखा कि काफी लेयर्स हैं, लाइक दे ऑलरेडी हैव एक एंटी टेररिस्ट पूरा विंग है पास सूबाई पुलिस के पास, फिर इनकी स्पेशल फोर्सेज हैं, डॉल्फिन हैं, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। लेकिन क्रिटिकल विल हो तो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में, टोटल हफ्ते या 10 दिन की कार्रवाई अगर इनकी नियत ठीक हो। बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेट्स सी के फाइनली गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। फौज अपने ओन पे शायद नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर है कि इससे पहले एंटी डकैत ऑपरेशन पूरा जो है ये किया गया था 80s में।
सर आपने बड़ी प्यारी बात, आपने थोड़ा जेन्युइन सा एस्टीमेट दे दिया, इट्स 7 to 10 days ऑपरेशन, वेयर एज हमारे वजीरे दाखिला तो फरमाते हैं कि एक एएसआई की मार है। हाउ इट इज पॉसिबल सर? ये तो कौम को पटड़ी से उतारने वाली बात है।
जैसी बलोचिस्तान से मुतालिक बातचीत हो रही थी, मेरे ख्याल में बड़ा लूज कमेंट था ये, कोई मतलब टिकटॉक तो आप नहीं चला रहे, यू रनिंग इंटीरियर मिनिस्ट्री। मुझे भी अफसोस हुआ, ही शुड बेसिकली गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली जो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन है वो वजीर दाखिला की ही है। गुड थिंग इज के सरवाज मुफ्ती साहब वहां पे हैं जो पहले वजीर दाखिला रहे बलोचिस्तान के, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी केयर टेकर गवर्नमेंट उनके पास थी, वो काफी बेहतर समझे। अगर उनकी बातचीत आप देखें जो उन्होंने की, वो ज्यादा आई थिंक मुदल्लल भी थी और फोकस थी। बाकी जो थोड़ा सा आई थिंक अगर मुझे मैं एक्सपेंड करूंगा कि जो इशू है पाक अफगान बॉर्डर पे, यहीं से सारा दरअंदाजी, और किसी हद तक पाक ईरान बॉर्डर से भी आती हैं चीजें लाइक कुलभूषण वगैरह ऑपरेट करते रहे, ये थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी ज्यादा इसमें प्रोनाउंस है कि पिछले 40 साल में 30 साल जो है अफगानिस्तान ऑक्यूपाइड है सुपर पावर। ये लोग एट टाइम भूल जाते हैं, पीपल थिंक शायद पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या मडगास्कर, तो उसके अंदर कोई 6 रजीम चेंज हुई। पहले रशियंस आए, आपको याद होगा, और लंबी लिस्ट है वो कितनी, अफगानिस्तान रिमेन डिस्टेबलाइज बाय सुपर पावर्स फॉर 30 ईयर्स, और माशाल्लाह कनाडा भी अपनी फौजें वहां पे इन्होंने भी भेजी थी अनफॉर्चुनेटली, तो उसका बेसिकली भला नहीं हुआ। 50 लाख अफगान आए, उसके बाद क्लाशनकोप कल्चर है, ड्रग्स है, और मेरे ख्याल में अफगान लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। बेसिकली सुपर पावर्स पाकिस्तान ने एडजस्ट किया, चाहे वो जंगजा का टाइम था या बाद में मुशरफ का था, पर डिफरेंट एनवायरमेंट थी, इसीलिए अफगानिस्तान पे तो कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती। आपने डे टू डे डील करते हैं, अभी आते हैं जो फॉलो आउट आता है, बिकॉज यही सेफ वेपन बनी हुई है, चाहे वो खारिज और टीटीपी के या ये लिबरेशन फ्रंट वाले हैं, इनकी पनाहगाहें भी वहां पे हैं, तो ये एक मतलब एक कॉन्स्टेंट बेस और सप्लाई तो मौजूद है। अभी आ जाता है कि इंटरनली आपने इसको कैसे करना है, कुछ सजेशन आई थिंक आशर रजीम साहब ने दी, आई लाइक डिट, और मैंने बल्कि शेयर भी की हमारे जो लेट्स से दोस्त यार हैं सिस्टम में जी, कि इसको देख लें। मतलब एक एंगल ये भी है जो कल्चरल है, ट्राइबल सिस्टम है, किस तरीके से पंजाब में देखा जाता है, सिंध में, क्वाशरीन साहब ने काफी काम किया है एंड ही डन वंडरफुल जॉब, तो उसको भी
वेरी वेल इनसाइड आउट
जी, एग्जैक्टली क्वेटा में उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा और इन एंड आउट जानते हैं सिस्टम, तो अच्छी सजेशन कहीं से भी आए मेरे ख्याल उसको देखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मिलिटेंट कार्डर है जो कहते हैं एसएचओ का, जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कैटेगरी ए बी सी एरियाज हैं हिंदुस्तान में, कैटेगरी ए एरिया वो है जो जो जिले की बाउंड्री होती है और हाईवेज है, और वो सही कह रहे हैं कि पुलिस जो है उसकी रिट जो वहां तक, बाकी लेवीज है करना या फिर फ्रंटियर कोर है, इसका मतलब है कि इमीडिएटली पुलिस बाहर निकल के कार्य से पहले ये कि लीगली आप इसको ठीक करें। जो आगाजी हकूक बलोचिस्तान आए उसमें फिर ये लूज दोबारा जो है चीज छोड़ दी गई कि पुलिसिंग का इशू है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके बाद अभी टारगेटेड ऑपरेशन होगा پہلے بھی چل رہا ہے, بیکاز یہ جو ہے سویلینس کو شہید کرنا, پھر رینٹ آف اونرشپ ڈس آرمی کی اخدیر پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس میں آفر کی گئی ہے کہ دو بڑے ملٹنٹ گروپس جو ہیں لاسٹ ایئر گزار مام شمبے اور سرفراز منگل زئی کا, انہوں نے سرنڈر کیا اور مین اسٹریمنگ ان کی ہو بھی, کیونکہ کارڈز کے ساتھ ود ویپنز آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کنپٹی پہ بندوق رکھ کے پھر اسٹیٹ کو کہیں, بیکاز بلوچستان از ٹو امپورٹنٹ کہ اس کو ایسے چھوڑا جائے. باقی جغرافیکل مجبوریاں ہیں, جس طرح مینشن ہوا 42% آف پاکستان کا ایریا ہے, انفراسٹرکچر بھی فلی ڈیولپ نہیں, ایکسس کا ایشو ہے. ہندوستان کا اپنا کلاس گیپ بہت زیادہ ہے, یا سردار ہے تو یا بالکل ہی غریب آدمی. اور ابھی ایفرٹ ہو رہی ہے جس میں انیشیٹو ہیں کہ مین اسٹریم میں لایا جائے لو یوتھ کو. اور ابھی آپ دیکھیں اتنی بڑی چیز لائک سی پیک 2 کی لانچنگ ہے, میجر پورشن گو ٹو بلوچستان, اور پھر ریکارڈ ڈیک ہے 2027 میں جو گولڈ پروڈیوس انشاءاللہ کرنا شروع کر دے گا پروڈکشن کا, اس کا جو ڈیٹ ہے. تو اس میں اسی یوتھ کو آئی تھنک اسٹیک ہولڈر بھی بنایا جائے اور اس میں شیئر بھی رکھا گیا ہے, تو چیزیں پازیٹیولی موو کر سکتے ہیں. گلف میں آپ دیکھ لیں, آپ سے برے حالات تھے, پر یہ ہے کہ لوگوں کو آئی تھنک گورننس بہتر کی, حالانکہ ڈیموکریسی نہیں بھی ہے لیکن پیپل آر ہیپی, اور وہاں پہ جو بھی ریسورسز چاہے تیل تھا یا وہ تھا اس کو یوٹیلائز کیا گیا. تو یہ اس لحاظ سے آئی تھنک ہر لحاظ سے ڈفرنٹ پرانگز چلیں گے اس میں, وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ بھی ہے, لیکن جو دہشت گردی والا جو ہے نا سلسلہ, یہ آئی تھنک اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ آلموسٹ 1500 سے 2000 لوگ ہیں ڈیفینیٹلی, یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ڈفرنٹ جگہوں, بڑے کوآرڈینیٹڈ تھے, وہ ریزونیٹ کر رہا تھا, بھارت بھی کر رہا تھا. اور انفارچونیٹلی میں یہ بڑبڑا کہوں گا کہ ابھی ہوسٹل ایجنسیاں ویسٹ کی بھی اس میں آ چکی ہیں, دے ڈونٹ لائک سی پیک. اور میں آپ کو شیئر کروں یہ سارا ایٹم کا اپنا انٹرویو آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ لیں, جو سی آئی اے کی ٹاپ نوچ رہی ہیں, کہ 17 ارب ڈالر تو امریکہ دے چکا ہے افغان طالبان, سینکشن وینکشن وومن رائٹ سارا اپنی جگہ, تو وہ دے چکے ہیں کسی نہ کسی بہانے. جسٹ امیجن کہ ایک طرف سینکشن کی, تو وہ پیسہ پھر 7 ارب ڈالر کا اسلحہ وہاں پڑا ہوا ہے, 20 سال کے لیے کافی ہے. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہیں, کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, کچھ میرے خیال انڈرسٹینڈنگ ہے. میرے خیال میں آصف عظیم صاحب کی بات سنی جانی چاہیے کہ آپ لوگوں کو سمجھیں دین یو ایکٹ, اور ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم بالکل حل نہیں کر سکتے. پھر انٹر پروونشل ڈس ہارمنی کی بڑی ایفرٹ ہوئی, کچھ بے وقوف لوگ آئی ووڈ سے پنجاب سے بھی بیچ میں, یا ہوسٹائل تھے بیچ میں, ٹویٹس کر رہے تھے کہ جی وہ کوئٹا کیفے کو بند کر دو, ناٹ ریئلائزنگ ویسے ہونا کسی کا بھی نہیں چاہیے کہ کوئٹا کیفے لا رن بائی پٹھان, وہ ہمیں بھی پتا ہے. باقی جو ہے سفاد بکٹی صاحب نے کہا کہ پاکستانی شہید ہو, یہ بڑی بات ہے, چاہے وہ بلوچ تھا, اس میں 3 آئی تھنک بلوچ بھی ہیں, چاہے وہ کام تھے, تو پاکستانی شہر ہمارا نقصان ہے.
سر بڑی خوبصورت بات کی بھی آپ نے, کہا کہ افغان اور پٹھان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بکتا نہیں ہے, آپ اس کو رینٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ 17 ارب روپے سینکشنز کے باوجود امریکہ نے لیے ہیں. یس, یہ پچھلے دنوں کی ایک نیوز تھی جس کو ہم نے کور بھی کیا تھا کہ بائی مسٹیک انہوں نے کہا کہ بہت بڑی رقم افغانستان ٹرانسفر ہوئی, وچ دے ڈیڈ ناٹ, بٹ دے ور انویسٹیگیشن اس کی چل رہی ہے, دس از ہاؤ دے ہیلپ. اور آف کورس پٹھان نے ہمیشہ ریزسٹنس بھی دی ہے, وہ بکتے نہیں ہیں. میرا سر آپ نے آشر عظیم کا الحمدللہ, اللہ کرے کہ ان چیزوں کو سنا جائے. میرا آپ سے اگلا سوال, اب اگر بلوچستان کی ہی بات کر رہے ہیں تو میں بلوچستان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جتنے آپ کے وہاں کے نواب بکتیز اور کاکڑز, یہ تمام کے تمام, یہ کیوں محسوس نہیں کرتے کہ بلوچستان کے پاس بے شک کے ذخائر ہیں مگر ایکچول ویلیو ان ذخائر کی, جیسے رشید عظیم نے کہا تھا کسی کو بھی ایگزیجریٹڈ ویلیوز کا پتا ہے مگر ہیں اس زمین میں ذخائر ہیں, یہ سیپریٹ تو ان کو کروا دے گا ہندوستان. بنگلہ دیش کو بھی سیپریٹ کرا دیا تھا جس کو نریندر مودی صاحب نے خود بنگلہ دیش میں جا کے کنفیس کیا تھا کہ مکتی باہمی نے کس طرح سے ہیلپ کیا تھا. بٹ ہو دے ول ریلائی آن فار دی سروائیول ان دا لانگ رن, وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ دس؟
اس میں تھوڑا آئی تھنک اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو ڈیموگرافک ہے بلوچستان کی, نام ٹھیک ہے بلوچستان ہے, سو آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 42-43% پشتون ہے, جو تقریباً اپر جو ایگریکلچر بیلٹ ہے, آپ شروع کریں کوئٹہ سے زیادہ تر اوپر چلے جائیں جو والی سائڈ پہ جہاں پہ ہے, اور جس کو ایکسٹینڈیڈ خیبر پختونخوا بھی کہا جاتا ہے, آپ کو اس میں نیشنلسٹ موومنٹ بھی چلتی نہیں, باقی آ جاتا ہے ریسٹ آف. اچھا, اس کے اندر پھر اگر لیٹس سے بلوچ 45%, کیونکہ اس میں پھر مکرانی بھی آ جاتے ہیں, تو اس میں براویز اور بلوچ کو اگر آپ کریں تو دین بیکم آلموسٹ 22-23%. اس کے اندر ٹوٹل دو ٹرائبز ہیں, سارے نہیں ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ ایٹ آرمز ہیں, जो मरीज है और बुकटीज है, लाइक अभी सरवाज बुकटी भी तो बुकटी है ना, बट इज वजीराला है, और इससे पहले भी रहे शाहजहान बुकटी है जो खुद बुकटी के अपने नवासे हैं, तो वो भी मेन स्ट्रीम में है। उसके अंदर फिर आप कह लें कि बुकटीज और मरीज के अंदर फिर कुछ ये कार्डर है, अभी ये 2,500 हो जाता है, 3,000 हो जाते हैं, डेफिनेटली दे हैव लिंकेज। बाकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स के अंदर है। एक वक्त था कि इवन पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता था, कुछ चीजें काफी मिनिमाइज हो गई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो नजर नहीं आते। मैं मीडिया को हमेशा कहता हूँ कि व्हाई डोंट यू गो एंड कवर, बलोचिस्तान से सिर्फ नेगेटिव खबर ही आती, भेजें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जाके देखें जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो उसको सॉरी पूरे बलोचिस्तान पे आई थिंक लेबल कर देना, या खुदा ना खास्ता इस तरह सोचना कि ये होगा। मेरी अपनी असेसमेंट में आई थिंक दिस इज फार फेट, अगर 2,500 बंदा है और वो वेल ऑर्गेनाइज है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसके अंदर फिर आप देखें कि अगर गुजार माप शंबे है या जो बाकी अपना सरफाज बंगल, ये भी तो सरफाजदार है, बलोच सरदारों में से थे या मिडल आर्डर में से, अभी थोड़ा चेंज आया क्योंकि दो जो बड़े आई थिंक ग्रुप्स हैं जिसमें हरबियार मरी है और बहंगा बुकटी का है जो लीड करते हैं, वो तो लंदन में बैठे, और इफ यू लुक एट देम बेसिकली आई वुड से दे वाइन एंड डाइन, यू नो विदर तो वीआईएस हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, यहां पे फिर मिडल क्वार्टर को लाइक अलंदर बलोच है या बाकी ग्रुप्स को आगे किया गया या मजीब ब्रिगेड था। तो अभी आपने देखा कि सुसाइड बॉम्बर्स का भी एक ट्रेंड शुरू करने की कोशिश की है, स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे काम करने की जरूरत है और उस पर काम हो भी रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा टाइम नहीं आएगा। और वाकई आपकी बात ठीक है, अगर बांग्लादेश ने भी रियलाइज किया आम आवाम ने कि अलहदा होके हम, मैं इंसिडेंटली मैंने कोर्स भी किया वहां एक साल मैं रहा हूं ढाका में, तो वी मेड वेरी गुड फ्रेंड्स, और ये जनरल फीलिंग थी ठीक है अलहदा हो गया, लेकिन नुकसान उनका भी बहुत ज्यादा हुआ, तो अल्लाह करे उस तक चीजें ना जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इसको सही समझने की जरूरत है, जैसा आशिर अजीम ने बताया कि कल्चरल जो ट्राइबल कल्चर है, मैंने भी काफी टाइम गुजारा है, 5-6 दफा, आई थिंक 6-7 ईयर्स आई हैव सर्व्ड, बाकी लास्ट असाइनमेंट भी वहीं पे थी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, चीजें सॉल्व की जा सकती है, वी हैव टू ऑनर देम, आप उनकी इज्जत करें, आपको रिसोर्सेज दें और उनको स्टेक होल्डर बनाए रिसोर्सेज में, कोई वजह नहीं है काम नहीं कर सकते।
An army has done very many things, चाहे floods हैं, चाहे कहीं कोई disaster है, तो पाकिस्तान army के जवान हमेशा वहां पर मौजूद हुए। मैं देख रही थी तकरीबन 5,60,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं, जिसमें रिजर्व्स भी हैं और सिविल आर्मी फोर्सेज भी साथ में शामिल होती हैं, नेशनल गार्ड भी इसमें आ जाता है, तो दिस नंबर गोज फार बियॉन्ड दैट। मेरा यहां आपसे, अभी आपने कहा कि वो 2,000-2,500 ऑर्गेनाइज पीपल है, हाउ कम दिस बिग नंबर कैन नॉट कंट्रोल दैट 2,000-2,500, नंबर वन, एंड नंबर टू, आप मरीज एंड बक्तीज आर लीडर्स, बट वाई डोंट यू गिव बेनिफिट टू गरीब आदमी, आप सड़कें तामीर करें वहां पे, और पाकिस्तान के जवान तो मेरा ख्याल है सब कुछ कर सकते हैं, आप सड़कें तामीर करें, आप वहां पे स्कूल्स, तालीम और अपनी सुपरविजन में अगर आप ये करें तो यू कैन चेंज फेट ऑफ बलूचिस्तान एंड यू कैन चेंज फेवर्स रादर देन फॉरेन कंट्रीज। जैसा भी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ईरान का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, अफगानिस्तान का आई डोंट नो, इसराइल का भी है, इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट टू पनिश समबडी। तो क्या बात है कि पाकिस्तान आर्मी अगर वहां के आम आदमी को फैसिलिटेट कर देती है, उनके बच्चों को तालीम की तरफ ले आती है, वहां पर वोकेशनल होम्स बना देती है, इंडस्ट्रीज उन लोगों को देती हैं, जैसे अब इस वक्त बांग्लादेश के जो जनाब यूनुस साहब हैं, नोबेल प्राइज होल्डर हैं, व्हाट डिड ही डू विद द स्मॉलर लोन्स, उन्होंने एम्पावर किया था आम आदमी को, एंड टुडे उन्होंने चूज किया कि ही वी नीड हिम एज आवर लीडर। तो पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में बजाय मारने के उन लोगों को फैसिलिटेट करके एम्पावर क्यों नहीं करती?
अच्छा, इसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वही बात हुई है कि जो बलूचिस्तान में अच्छा काम से बात नहीं होती। हम लोग भी जब थे स्टाफ पे थे क्वेटा में, तो एंड वी आर पार्ट ऑफ द प्लानिंग, लाइक ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बना है, और यही था जी कि अगर पोर्ट बन जाएगी और मकरानी के बच्चे ने फिर मछलियां पकड़ लिया तो फिर चेंज नहीं आएगी, यू हैव टू ब्रिंग एम अप एट पार विद पंजाब और सिंध जो है कराची के बच्चे। इसी तरीके से क्वेटा में हुए, फिर यूनिवर्सिटियां बनी है, आई थिंक ये जो है बलूचिस्तान में नई यूनिवर्सिटियां बनी है। फिर सबसे बड़ा इशू वही था, 42% ऑफ द लैंड एरिड लैंड है, और उसके अंदर कम्युनिकेशन का मसला था। तो अभी सी पैक इनिशिएटिव्स हैं, चाहे अभी कोस्टल हाईवे देख रहे हैं, मुझे याद है हम कराची से ग्वादर गए थे, टुक अस 18 आवर्स, और अभी माशाल्लाह 5-6 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो ये डेवलप हुई। उसके बाद फिर लेटर्स हैं, मतलब क्वेटा से भी आप ग्वादर जा सकते हैं, फिर होशाब से सिंध से एक सड़क जाती है। तो इससे एक तो फर्क पड़ा है कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से मूवमेंट हुई है। फिर डेफिनेटली इंसेंटिव है, लोग बच्चे काफी आके पंजाब में स्पेशल कोटा में पढ़ते हैं, और होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इवन अगर वो 50% पे है तो सिविल सर्विसेज में भी उसको आई थिंक दिया जाता है कि आप उसको अपग्रेड करें, गिव देम टाइम। और इसी तरीके से अभी जितने बड़े लाइक अभी एक केस था कासा मार्बल का, मुझे याद है हमारे टाइम पे वहां पे लड़ाई थी 2 ट्राइब्स में, और बिलियंस ऑफ डॉलर का वो मार्बल है, फिर उसको सॉल्व किया इस तरह चमला कोल माइंस है वहां झगड़ा था, तो फौज ने एफसी ने करके, और अभी माशाल्लाह वहां से प्रोडक्शन शुरू है, फिर एक्रोडिक है ये डिलीवर करना शुरू करेगा, विच विल डेफिनेटली बी अ गेम
चेंजर। रेकोडिक तो पाकिस्तान की बेचारा, हमारी गवर्नमेंट भी तो स्टेबल नहीं है ना, कोई लॉन्ग टर्म नहीं करता। अभी सर आपने एक लफ्ज कहा कि मछलियां पकड़ना ज़ाहिर उनका भाई पेशा है, आप वहां पे उनको एम्पावर कर सकते हैं, टू प्लीज देम यू कैन गिव देम गुड इक्विपमेंट, गुड टूल्स, एंड दैट इज अ ग्रेट बिजनेस इन फैक्ट। बजाय इसके कि आप, क्योंकि अब जब आपने सड़कें बनाई, उनका एक कंसर्न ये भी है कि फॉरेन वर्कर्स वहां पे आ गया है, जो लोकल बलूचिस्तान का बंदा है उसकी एम्पावरमेंट के लिए दे आर लिटिल कंसर्न। तो आप मछलियों के लिए उनको इक्विपमेंट बेहतरीन लेके दें,
यही पॉइंट था, बेसिकली यही पॉइंट था कि अगर आप जिस तरह आशुद्दीन ने कहा ना जो डॉग्स हैं जो चलती हैं, जो वो मतलब वो कह रहे 600 साल पुरानी, वो मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर उसमें उसी तरीके से वाई डोंट यू गिव द मोटर बोट्स, या फिर ये मछली की प्रोसेस जैसा अभी पश्चिम में आप पता होगा जो फिश हार्बर है, आई डोंट नो आपने या सुना हो, मतलब उसका जापान में जाता है $12 का तो एक प्रॉन वहां से जाता है।
सर इट्स अ ग्रेट बिजनेस, सो यू दैट्स व्हाट माय कंसर्न इज, कि वो जितना आदमी आप उसको एम्पावर कर दें और फिर देखें आप वो लोग आप लोगों के गुण गाते हैं कि नहीं गाते।
जी बिल्कुल है, और ये मैंने खुद इंटरेक्ट किया, वी वेरी गुड फ्रेंड्स, अभी फौज में भी माशाल्लाह, अभी आप देखेंगे खेप अभी मेरे जनरल रैंक तक पहुंचे, लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, जो लेट्स से कुपंजगूर का है, मुझे याद है कि मैं एक जगह कमांड कर रहा था चोलिस्तान में, तो एक बलोच कैप्टन आया एक यूनिट में था, और वो कहते जी मेरे हमारी फैमिली का सवाल ही पैदा नहीं, तुम्हें कमीशन दे दे फौज, तुम्हें निकाल देंगे, पर नाउ माशाल्लाह ही इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इसी तरीके से फ्रंटियर कोर है इसमें, लेकिन मेनली ये है कि आपने उनको जो सिविलियन जॉब्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगर रेकॉर्ड एक गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जो माइनर्स होंगे, उसके अंदर जो मैनेजर्स होंगे, उस लेवल पे लोग आए और उनका स्टेक बढ़ाएं। इसी तरीके से ग्वादर का जो एयरपोर्ट है उसके मैनेजर्स हों, इस तरह होटल्स में बजाय इसके को वेटर का काम करे, ही शुड बी इधर ओनर और लेट्स से चीफ एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं हो सकता। और बड़ा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में, आप देख रहे हैं उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हिंदुस्तान के बच्चों ने, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट तो ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आपने सर मेरा मैं ये सारी चीजें डूएबल हैं, मैं कहती हूँ एवरीथिंग कैन बी डिलीवर्ड, अगर आप आम आदमी को एम्पावर कर देते हैं ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बलूचिस्तान गुन गाएगा और विल बी प्राउड टू से कि यस वी द पाकिस्तानीज। सर आर्मी में मैं मानती हूं कि जब आप इन आर्मी फोर्स में हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप 2 साल तक बाद में भी इंटरव्यू नहीं दे सकते। हमारे बहुत सारे जर्नल्स तो आप सोचिएगा कि इधर से रिटायरमेंट ली, इधर से वो अमेरिका के थिंक टैंक्स में चले गए, ठीक है 2 साल का वो पीरियड भी उन्होंने इंतजार ना किया। यस, आप जैसे लोग जिन्होंने अंदर से देखा है, बाज जगहों पर सगे बेटों को मां बाप से गिला होता है, वो बर्मला उसका इजहार भी करते हैं। आर्मी के बहुत सारे सिंसियर जर्नल्स जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा भी नहीं, जिंदगी भी अपनी कसमोपुरसी में गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव ऑल द बेनिफिट्स, बट स्टिल नॉट इन एज कंपेयर टू अदर्स हु लेफ्ट पाकिस्तान, गॉट बेटर पोजिशंस एंड इन्वेस्टेड अब्रॉड, वो बेचारे अगर आज कोई जिक्र भी करते हैं, कभी आप पेंशन उनकी रोक देता है इदारा, कभी उनकी उनके तमाम बेनिफिट्स को रोक देता है, तो अगर आप यूं स्नब करेंगे अपने ऑफिसर्स को भी, तो सर अवाम जो है ना, अब दिस इज नॉट ए 19th सेंचुरी, This is a very advanced period of time. And then people sometimes judge, and judgment might be wrong. कि जो बंदा बताना चाहता है आप उसको behind the bars कर देते हैं.
इसमें जो आर्मी का है ना, जो सिस्टम है, आशीष जी साहब भी आई थिंक बड़ा बेहतर समझते हैं. एक इवन विद इन सर्विस कोई वो नहीं है पाबंदी की, आप बात नहीं करिए, जरूर है कि वो इनर सर्कल में होगी. और ये जो रिकमेंडेशन जो मैं बात करूं, इन सर्विस दी थी, वी वर पार्ट ऑफ लेट्स से कुछ ना कुछ जो हिस्सा डाला प्रसाद में, और उसमें लाइक अभी आपको हम देखा होगा कि पंजूर की जो खजूर है वो बड़ी मशहूर हुई है, तो वहां तो कब से थी, लेकिन अभी इट्स बिकम एन एक्सपोर्ट थिंग. और उसमें फौज ने हेल्प किया साल दर, एक के लिए एक एक्सेसिबिलिटी है, फौज तो नहीं हो सकता. बाकी जो है आई थिंक एंगेजमेंट भी शुरू हुई है वेटरन्स के साथ, अभी आप देखेंगे कि हाईएस्ट लेवल पे भी हो रही है, और अगर कोई लेट्स से मिसगिविंग्स थी वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगी. लेकिन डेफिनेट